रोमियो 12 अध्याय 3 पर, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुध के साथ अपने आप को समझे। ये श्रोताओं, पहले विश्वास का स्तर वो स्तर है जहाँ पर आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं और उद्धार प्राप्त करते हैं। दूसरे विश्वास का स्तर वो स्तर है जहाँ पर आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं और उसके अनुसार जीने की कोशिश करते हैं। इसलिए तीसरे विश्वास का स्तर वो विश्वास का स्तर है जिसमें आप वचन का अभ्यास करते हैं। तीसरे विश्वास के स्तर में आप किसी दबाव के कारण वचन का अभ्यास नहीं करते, वरन आप इसे स्वयं सेवक होकर पालन करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं। मसीह में प्रिय श्रोताओं और टेलीविजन पर देख रहे दर्शकों, जब आप एक राई का दाना बोते हैं तो वह अंकुरित होता है और बड़ा होता है और अंत में एक बड़ा पेड़ बन जाता है। जीवन का बीज जो बोया गया था, जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं तो वह भी बड़ा हो जाएगा और बड़ा विश्वास बन जाएगा। उसके अनुसार कि आपका विश्वास कितना बढ़ता है तो इस संसार में जो आप कार्यों का अनुभव करेंगे वो भी अलग अलग होंगे और स्वर्गीय निवास स्थान और प्रतिफल वो भी अलग अलग होंगे विश्वास के अनुसार। लूका 17 अध्याय 20 से 21 पद कहता है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता और लोग यूहन्ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालांकि आप उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन स्वर्ग का राज्य पहले से ही आप में है। जितना आप उसे अपने हृदय में एहसास करते हैं और जिस सीमा तक हम उसमें विश्वास के द्वारा प्रवेश करते हैं, आप इसकी साफ आशा से भर जाएंगे और आपके हृदय में सच्चा स्वर्ग होगा, धन्यवाद और आनंद के साथ प्रभु में हर दिन चलते हुए। लेकिन अगर बीज लंबे समय तक अंकुरित नहीं होता है इसके बोए जाने के बाद, तो उस बीज में जीवन अंत में खत्म हो जाएगा और बीज सड़ जाएगा। उसी प्रकार से यद्यपि आपने पवित्र आत्मा पाया है और उद्धार भी पाया है, लेकिन अगर जीवन का बीज आपका आप में अंकुरित नहीं होता है लंबे समय तक और नहीं बढ़ता है जब वह आपके हृदय में बोया जाता है, तो आप उद्धार भी प्राप्त नहीं कर सकते। शत्रु दुष्ट और शैतान आपको संसारिक इच्छाएं देगा और शक देगा ताकि वह कम से कम विश्वास जो आप में है जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है उसे भी छीन ले। मुझे आशा है कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया बहुमूल्य बीज आप अपने अंदर भुजने नहीं देंगे किसी भी तरीके से। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप उसमें पानी डालते रहेंगे और उसकी देखरेख करेंगे, बिल्कुल ऐसे जैसे जमीन पर बोए हुए बीज की आप देखरेख करते हैं, ताकि आपका विश्वास बढ़कर एक बड़े पेड़ के आकार की अवस्था में पहुँच सके। प्रिय श्रोताओं, पहले विश्वास का स्तर वो स्तर है जहाँ पर आप केवल पवित्र आत्मा प्राप्त करते हैं और उद्धार प्राप्त करते हैं। दूसरे विश्वास का स्तर वो स्तर है जहाँ पर आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, कोशिश करते हैं इसके अनुसार जीने की। आप परमेश्वर का वचन सीखते हैं, आप सत्य जानते हैं। यदि आप इसके अभ्यास करने की कोशिश करने के स्तर पर है जो कुछ आप जानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरे विश्वास के स्तर पर है। दूसरे विश्वास के स्तर में वे वचन को जानते हैं और सीखते हैं कि उन्हें उसे मानना है, इसलिए वे कम से कम उसका अभ्यास करने की कोशिश करते हैं। कभी कभार वे वचन का अभ्यास करते हैं, लेकिन कभी कभार वे उल्लंघन कर बैठते हैं और शरीर का काम कर बैठते हैं। परंतु जैसे कि वो गिर जाते हैं और फिर से खड़े हो जाते हैं, फिर से चलने लग जाते हैं, यदि वे कोशिश करते रहें वचन के अनुसार जीने की तो उनका विश्वास बढ़ जाता है। जब उनके विश्वास का परिमाण बढ़ता है तो फिर वो योग्य हो जाते हैं और भी अधिक वचन का अभ्यास करने के। इस तरीके से जब वे एक ऐसे स्तर में पहुंच जाते हैं जहां पर वो नियमित तौर पर वचन का अभ्यास कर पाते हैं, तो वह तीसरे विश्वास का स्तर है। चाहे आप वचन कितना ही क्यों ना जाने, यदि आप उसे नहीं मानते आपका विश्वास नहीं बढ़ सकता। यदि आप लगातार कोशिश करते रहें और अभ्यास करते रहें तो आप उसे मानने के योग्य हो पाएंगे। मान लीजिए 1000 चीजें हैं जो परमेश्वर हमें करने को कहता है या नहीं करने को कहता है, रखने को कहता है, निकाल फेंकने को कहता है। जब हम एक एक करके इन वचनों को मानेंगे तो हम 500, 600, 700 और 800 उनमें से मानने के योग्य हो पाएंगे। जब हम वास्तविकता में परमेश्वर के वचन का अभ्यास करते हैं तो हम तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं। इसलिए तीसरे विश्वास का स्तर वो स्तर है जहाँ वचन का अभ्यास किया जाता है। दूसरे विश्वास के स्तर में कभी कभार परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हुए आप शरीर का काम कर सकते हैं, लेकिन तीसरे विश्वास के स्तर में आप शरीर का काम बिल्कुल नहीं करते। यदि वे जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है, यदि वे शरीर का काम करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो विश्वास से गिर रहे हैं। क्योंकि वो गिर रहे हैं इसलिए परमेश्वर खुश नहीं हो सकता। यह परमेश्वर को क्रोधित करना है। पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में जब वे पाप करते हैं, यदि वे पश्चाताप करें और मन फिराएं, तो परमेश्वर के विरोध में पाप की दीवार वे खड़ी नहीं करते। लेकिन तीसरे विश्वास के स्तर में यदि वे शरीर के काम करें, जिन्हें की पहले और दूसरे विश्वास के स्तर के लोग करते हैं, तो वे पाप की दीवार खड़ी कर रहे हैं। वो इसीलिए क्यों? क्योंकि वो जानबूझकर पाप कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये पाप है। इसीलिए वे पश्चाताप की आत्मा प्राप्त नहीं कर सकते। और साथ ही क्योंकि वो प्रभु को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं, इसलिए उनके पाप क्षमा नहीं हो सकते। इसलिए वो ऐसी पाप की दीवार परमेश्वर के विरोध में खड़ी करते हैं। उन्हें इस दीवार को तोड़ना होता है, लेकिन ये आसान नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बाइबल में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर उन्हें पश्चाताप की आत्मा नहीं देता। आसान नहीं है उस पाप की दीवार को तोड़ना। उस पाप की बची हुई दीवार से यदि वे फिर से पाप करते हैं, तो वो दीवार और भी मजबूत हो जाएगी और अंत में वो उस पाप से पश्चाताप नहीं कर सकते और मन नहीं फिरा सकते। इसीलिए उन्हें गंभीर बीमारी लग सकती है या फिर बड़ी समस्या अपने व्यापारों में भी सामना कर सकते हैं। यहाँ तक कि उनका व्यापार बंद भी हो सकता है या फिर उनका जुलूस निकल सकता है या फिर उनके परिवार के सदस्यों में समस्या आ जाएगी, जिससे परिवार के सदस्यों को मुश्किल आते आएंगे। वे परमेश्वर से सुरक्षा पाने चाहिए लेकिन नहीं पाते। उनमें शैतान के कार्य होते हैं और बहुत सी समस्याएं उठ खड़ी होती है। तीसरे स्तर पर आप परमेश्वर के वचन का पालन जबरन या किसी दबाव से नहीं करते, बल्कि आप स्वयं इच्छा से करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं। उदाहरण के लिए, विश्राम दिन को पवित्र मानने और दशमांश देने के संदर्भ में सिर्फ उसे जानना और उसे समझना वो पूरी तरह से अलग अलग है। विश्राम दिन को मानने के द्वारा हम प्रमाणित करते हैं कि हमारी आत्मा परमेश्वर से संबंध रखती है, क्योंकि विश्राम दिन को पवित्र मानने की क्रिया परमेश्वर के अधिकार को प्रदर्शित करती है। जब परमेश्वर की संतान विश्राम दिन को पवित्र मानती है, तो परमेश्वर उन्हें सुरक्षा देता है आपदाओं से, विपत्तियों से, बीमारियों से और दुर्घटनाओं से पूरे सप्ताह भर, और उनके प्राण को समृद्धता की ओर अगुवाई करता है। और साथ ही संपूर्ण दशमांश देना वो परमेश्वर के तात्विक अधिकारों को स्वीकारना है, और ये स्वीकारना है कि हमारा सब कुछ परमेश्वर से आया है। चाहे हम कितना ही परिश्रम और कोशिश क्यों ना करें, परमेश्वर यदि हमें ना दे तो हम कोई फल काट नहीं पाएंगे। इस प्रकार से हमारी तमाम मजदूरी परमेश्वर से संबंध रखती है, लेकिन हम उसे इसका केवल 10वां हिस्सा देते हैं और बाकी बचा हुआ हम आजादी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम उचित दशमांश देते हैं, परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है कि हम अपनी कोई भी संपत्ति ना खोए, और उसने हमें प्रतिज्ञा दी है कि वो हमें आशीष देगा जब तक कि हमारे खजाने उमड़े ना, हमारे भंडार उभरे ना। परंतु यद्यपि हम बहुत ज्यादा सुनते भी है और हमारे पास ज्ञान है कि हमारा प्राण समृद्ध होगा और बीमारियां और आजमाइशें और आपदाएं हमें छोड़ के चली जाएगी, लेकिन बहुत बार हम विश्राम दिन को नहीं मानते और उचित दशमांश नहीं देते। हम उन्हें केवल तभी मान सकते हैं जब हम उन्हें अपने हृदय में समझते हैं, ना केवल अपने दिमाग से। वे अपने दिमाग में ज्ञान के तौर पर इसे जानते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है, परंतु वे केवल इसे तभी मान सकते हैं जब वे अपने हृदय में समझते हैं। ये आशीष है संपूर्ण विश्राम दिन को मानना, और विश्राम दिन को मानने के द्वारा वे उद्धार पाएंगे और स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। ये परमेश्वर के आत्मिक अधिकार को स्वीकारना है। वे जानते हैं, लेकिन अगर वे इसका अभ्यास नहीं करते तो फिर क्या प्रयोग है इसका। लेकिन यदि वे अपने हृदय में समझते हैं तो वे इसे मानेंगे और वे जानते हैं कि ये आशीष है, इसलिए परमेश्वर स्वर्ग द्वार को खोलेगा और उनके व्यापार को, उनके बच्चों और परिवारों को आशीष देगा जब वे उचित दशमांश देते हैं। जब वे अपने हृदय में इसे समझते हैं और विश्वास करते हैं तो वे इसे मानेंगे और आशीष प्राप्त करेंगे। आइए एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए आपका बॉस आपकी कंपनी में, वो आपको कहता है कि यदि आप पूरी रात भर काम करेंगे, केवल आज रात ही किसी काम को समाप्त करने के लिए जिसकी जरूरत है, तो वह आपको एक बड़ा बोनस देगा और आपकी उन्नति करेगा। साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर आप संपूर्ण रात भर काम नहीं करना चाहते तो वो काम किसी और को दे देगा, आप अपने घर जा सकते हैं और आराम कर सकते हैं। लोगों के लिए अपनी कार्यशालाओं में उन्नति करने के लिए वो बहुत सालों तक प्रयास करते हैं, और यदि वे केवल एक रात भर काम करने के द्वारा उन्नति प्राप्त करते हैं तो कौन इनकार करेगा? आत्मा में भी ऐसा ही है। यदि आप वास्तविकता में समझते हैं कि ये आशीष है विश्राम दिन को मानना और उचित दशमांश देना, तो फिर आप विश्वास प्राप्त करेंगे कि इसका पूरी तरह से अभ्यास कर सके। लोग वचन को सुनते हैं लेकिन अभ्यास नहीं करते, क्योंकि वे वास्तविकता में इसे अपने हृदय में नहीं समझते। दूसरे विश्वास के स्तर पर समझना, जहाँ पर आप पूरी तरह से नहीं समझते, और तीसरे स्तर पर वो पूरी तरह से अलग अलग है। परंतु यद्यपि आप दूसरे स्तर में वास्तविकता में नहीं समझते हैं, लेकिन आपने उसे सुना है और आप जानते हैं, इसलिए आप कोशिश करते हैं वचन का अभ्यास करने की। यदि आप प्रार्थना करें और कार्य करने की कोशिश करें तो परमेश्वर ऊपर से आपको अनुग्रह देता है और किसी न किसी क्षण आप उसे अपने हृदय की गहराई से समझ सकते हैं। वो अनुग्रह और ताकत आप में बनता है, इसीलिए आप अपने हृदय में विश्वास प्राप्त करते हैं और फिर आप उस वचन को आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। परंतु यदि आप एक नए जन्मे बच्चे को देखें, वो पहली बार जब चलने की कोशिश करता है तो बच्चा केवल एक ही दिन में खड़ा नहीं हो सकता और चलना शुरू नहीं कर सकता। वो सबसे पहले अपने हाथ और पैरों को हिलाते हैं, और जब उनकी ताकत बढ़ती है तो फिर वो अपने शरीर को घुमाना शुरू करते हैं और अंत में वो रेंगना शुरू करते हैं और अंत में अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में वो अपने पैरों में ताकत प्राप्त करते हैं और अंत में यहाँ तक कि वो दौड़ भी सकते हैं। क्या आपने ऐसे किसी नए जन्मे बच्चे को देखा है जो नीचे लेटा हुआ है और अचानक से उठकर चलने लग जाता है? मैं निश्चित हूँ कि आपने कभी भी किसी बच्चे को ऐसा नहीं देखा होगा। सबसे पहले वो लेटे हुए होते हैं, और जब वो माँ का दूध पीते हैं और बढ़ते जाते हैं तो वो फिर अपने आप को हिलाते हैं, अपने पैरों हाथों को हिलाते हैं, और जब वे और अधिक ताकत प्राप्त करते हैं तो वो जमीन पर रेंगना शुरू कर देते हैं। और जब वो इस प्रकार की प्रक्रिया से गुजरते हैं, उसके बाद वो बैठने लग जाते हैं और अंत में वे खड़े हो जाते हैं और फिर चलना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले वो एक कदम चलते हैं और फिर गिर जाते हैं। वो खड़ा होने की कोशिश करते हैं और चलना शुरू करते हैं, क्योंकि वे दूसरे लोगों को चलता हुआ देखते हैं, इसलिए अंत में वे चलने लग जाते हैं। विश्वास के साथ भी ऐसा ही है। आप केवल सुनने के द्वारा कार्य करने के लिए अनुग्रह और ताकत प्राप्त नहीं कर सकते। आपको प्रार्थना करना होता है स्वयं से और कार्य करने की सत्य के अनुसार कोशिश करनी होती है। जब आप ऐसा करते हैं, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है और वो आपको अनुग्रह देता है कि आप वचन समझें, और फिर आपके प्रयासों से आपको ताकत मिलेगी कि आप वचन का एक एक करके अभ्यास कर सकें। और जब आप अपने विश्वास में हियाव प्राप्त करते हैं तो उसके बाद आपको वचन का अभ्यास करना और मुश्किल नहीं लगेगा। वो जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है, उनके लिए वचन का अभ्यास करना मुश्किल नहीं है और ना ही उसके अनुसार जीवन बिताना। यदि आपको मुश्किल लगता है तो इसका मतलब यह है कि आप दूसरे विश्वास के स्तर पर है। वो जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है, वे परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, वे बाइबल भी जानते हैं, वे जानते हैं कि स्वर्ग और नर्क है, वे स्वर्ग के राज्य की खुशी को जानते हैं, इसीलिए वे उस खुशी का अनुसरण करते हैं। वे बेहतर स्वर्गीय निवास स्थानों में जाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए वे इसे बोझ नहीं समझते अपने विश्वासी जीवन को जीने में। बजाय इसके उन्हें खुशी और आनंदित महसूस होता है अपने मसीह जीवन को जीने में। बिल्कुल ऐसे जैसे आप अपना साधारण रोजमर्रा का जीवन जीते हैं, तो आपके लिए यह स्वाभाविक हो जाएगा एक स्थिर मसीह जीवन जीना। तीसरे विश्वास के स्तर में क्या आप में से कोई विश्राम दिन को पवित्र मानना भूल जाएगा? क्या कोई ऐसा होगा जो ऐसा कहेगा, मैं भूल गया कि आज विश्राम दिन था और मैं उसे नहीं मान पाया? क्या आप पूरे दिन के लिए खाना नहीं खाते क्योंकि आप उसे खाना भूल गए? क्या आप सांस लेना भूल सकते हैं? इसी प्रकार से ये आपके लिए जीवन और आदत सा बन जाएगा, ये आप में होगा, आपके शरीर में पहले से हो जाएगा, क्योंकि वो दृश्य असत्य लगभग दूर हो गए हैं। आप अब और अधिक शरीर का काम नहीं करते, अब आप शरीर की चीजों को दूर करते हैं और पापमय स्वभाव को अपने हृदय से दूर करते हैं। आप शरीर के कामों को पहले विश्वास के स्तर से दूर करने की कोशिश करते हैं, और जब आप दूसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं तो अब आप वचन का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं दूसरे विश्वास के स्तर में, तो फिर अभ्यास करने के द्वारा पूरी तरह से आप तीसरे विश्वास के स्तर पर आते हैं। वे जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है, यदि वे शरीर के काम करते हैं जिन्हें केवल पहले स्तर के विश्वास के लोग करते हैं, तो फिर यह परमेश्वर को निराश और क्रोधित करना है। इसलिए पाप की दीवार बन जाती है। इसलिए वो जन जो तीसरे विश्वास के स्तर पर है, उसे कभी भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिसे केवल वही करते हैं जो पहले विश्वास के स्तर पर होते हैं। यदि वह कुछ इस तरह से करता है तो परमेश्वर का क्रोध उस पर उमड़ेगा। इसलिए हो सकता है कि एक या दो साल में उसे पता चलता है कि उसमें बीमारी लग रही है, या फिर उसका व्यापार गलत जा सकता है, साथ ही उसके परिवार के सदस्यों में भी समस्या आ सकती है। दुष्टत्व और शैतान की बाधा के कारण वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर उसे सुरक्षा नहीं दे सकता। जब तक कि वचन पूरी तरह से आपके हृदय में एहसास नहीं होता और बड़ी बुराई की जड़ पूरी तरह से उखड़ ना जाए, आप विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ते रहें। प्रिय श्रोताओं, मैंने कहा कि जब आप वचन के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं तो आप समझ प्राप्त करते हैं, और जब आप समझते हैं तो फिर आप वचन का आसानी से अभ्यास करेंगे। मैं उदाहरण के साथ इसे साफ करता हूँ। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 पद कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। जब मैं हमारे सदस्यों को देखता हूँ जो विश्वास में बढ़ चुके हैं और कार्यकर्ता बन गए हैं, मैं देखता हूँ कि उनके चेहरे आनंद और धन्यवाद से भरे रहते हैं, उनके अंदर आत्मिक ज्योति होती है, उनकी झुर्रियाँ गायब हो जाती है। यद्यपि वो बहुत ज्यादा मेकअप भी नहीं करते, उनके चेहरे और भी सुंदर हो जाते हैं। ये तब होता है जब परमेश्वर का वचन उनमें रहता है, लेकिन तब तक वे हमेशा संघर्ष करते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने तमाम शरीर के काम दूर भी कर दिए हैं, तो भी उन्हें उनके अंदर पापमय स्वभाव के विरोध में संघर्ष करना होता है, क्योंकि वे पूरी तरह से सत्य के अनुसार कार्य नहीं कर सकते। इसलिए उनके वास्तविकता में मुख उज्जवल नहीं होते। इसलिए जब वो एक बार इन तमाम चीजों से मुक्ति पाएं और ज्योति के संतान बन सके, जिन्हें सच्ची परमेश्वर के पुत्र और पुत्री कहलाया जा सकता है, तो वो स्तर है जब वो आत्मा के स्तर पर आते हैं, चौथे विश्वास के स्तर में आते हैं, वचन उनका हो जाता है, तो वो हमेशा आनंदित रहेंगे। यहाँ तक कि जब वो आजमाइशों में और परीक्षाओं में क्यों ना पड़े, वे हमेशा आनंदित रहेंगे, वे चिंतित भी नहीं होंगे। उनमें हर वक्त परमेश्वर का प्रावधान और इच्छा होगी, इसलिए वे दाएं बाएं नहीं डगमगाएंगे, शैतान के द्वारा अभिलाषा में वे नहीं पड़ेंगे, वे केवल धन्यवाद से भरे रहेंगे। तीसरा और चौथा विश्वास का स्तर इस तरह से अलग अलग है। तीसरे विश्वास में आप जानते हैं वचन को, और ये भी कि आपको हर वक्त आनंदित रहना है, धन्यवाद देना है, निरंतर प्रार्थना करनी है, लेकिन तो भी कभी कभार आप अपना आनंद और धन्यवाद भूल बैठते हैं। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में संघर्ष होता है। आप सत्य के अनुसार कोशिश करते हैं जीने की, लेकिन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप में पापमय स्वभाव पाए जाते हैं, और साथ ही संसार की चीजों के लिए आप दुखित होते हैं, चिंतित होते हैं, इसलिए हर वक्त आप आनंदित नहीं रह पाते। लेकिन वो जो आत्मा में आ चुके हैं, अर्थात वे जो चौथे विश्वास के स्तर में, वे इस संसार की चीजों की चिंता नहीं करते। जब मैं विदेशी मिशन पर जाता हूँ, बहुत से कार्यकर्ता मेरे आसपास, उन्होंने इस बात को देखा है। बहुत बार हमें बहुत सी धमकियां मिली, ऐसे देश जहाँ पर कानूनी तौर पर मसीहत को अनुमति नहीं है, हमें बहुत धमकियां मिली, बहुत से खतरे थे, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे कभी भी किसी बात के लिए चिंतित होते हुए नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मुझे सांसारिक चीजों की चिंता नहीं होती, क्योंकि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ कि वो हमारे साथ है, और वो मुझे सुरक्षा दे रहा है, मेरी मदद कर रहा है, इसलिए मैं सांसारिक चीजों की चिंता नहीं करता। साथ ही साथ आपने मुझे कभी नहीं देखा है मेरे स्वस्थ और बीमारियों के विषय में चिंतित होते हुए। मैं किसी बात की चिंता नहीं करता इस संसार में। मेरे परिवार सहित, मेरे बच्चों सहित या कुछ भी जो इस संसार का है, इसलिए परमेश्वर के द्वारा दिया गया मेरे हृदय में ये आनंद कोई नहीं छीन सकता और मैं हर वक्त धन्यवाद दे सकता हूँ। यदि मैं किसी भी बात की चिंता करूं तो वो केवल परमेश्वर के राज्य के लिए है। मैं तब चिंता करता हूं जब हमारे सदस्य ये पाप करते हैं या जब वे बीमार होते हैं ये सोचते हुए कि उनका प्राण समृद्ध हो, और ये भी कि लगातार जागृति हो, और जब जागृति नहीं होती या फिर जब हम विदेशी क्रूसेड में जाते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एकत्र होने चाहिए परमेश्वर को महिमा देने के लिए, लेकिन जब उतने लोग नहीं होते जितनी हम अपेक्षा करते हैं तो मैं उन चीजों के लिए चिंतित हूँ, क्योंकि मैं परमेश्वर के सामने मुझे दुख होता है। मैं आत्मिक चीजों की चिंता करता हूँ और परमेश्वर के राज्य की। मैं संसार की किसी भी बात की चिंता नहीं करता, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में शांति दी है। ऐसे लोग आनंद और धन्यवाद से भर जाएंगे, इसलिए उनके चेहरों पर झुर्रियां नहीं होगी, उनकी त्वचा बूढ़ी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वे आनंद और धन्यवाद से अपने हृदय में भरे हुए हैं। वे इस संसार की किसी भी बात की चिंता नहीं करते, इसलिए उन्हें कोई झुर्रियां नहीं पड़ती। उनकी त्वचा ऐसे जवान रहती है जैसे वे 30 की उम्र के हो। आपके साथ भी ऐसा ही है। यदि आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में तेजी से जाएं, तो आपकी त्वचा बदल जाएगी। उनकी त्वचा के समान जो 20 या 30 की उम्र के है, और साथ ही साथ छोटी झुर्रियां भी गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप आनंद और धन्यवाद और खुशी से भरे हुए हैं। आपके पास कोई चिंता नहीं है, आपको गुस्सा या उस तरह से कुछ नहीं होता, इसलिए आपका मुख उज्जवल रहता है। निरंतर प्रार्थना करते रहो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की तुम्हारे लिए यही इच्छा है। यदि आप इस वाक्यांश के अर्थ को अपने हृदय में नहीं समझते, तो जब आप मुश्किल में पड़ते हैं, आप कोशिश करते हैं आनंदित होने की और धन्यवाद देने की, लेकिन ये केवल बाहरी तौर पर होता है। आपके हृदय में आप सोचते हैं कि मैं ऐसी मुश्किल में पड़ा हूँ, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए मुझे धन्यवादी होना चाहिए। मैं कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ? आप कोशिश करते हैं आनंदित होने की, लेकिन आप उसे और अधिक नहीं सह सकते, इसलिए अंत में आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वचन का पालन करने की कोशिश करते रहें, तो किसी क्षण से आप परमेश्वर की इच्छा को समझना शुरू करते हैं अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा। इस धरती का जीवन केवल क्षण भर का है, यदि भी मुश्किल है, लेकिन मेरे पास अनंत स्वर्ग राज्य में जाने की आशा है। इसलिए ये कितना धन्यवादी है, मुझ जैसा पापी, उसे माफी मिली और उद्धार प्राप्त किया, और साथ ही साथ इस मनुष्य जुताई के द्वारा मैंने मौके पाए कि मैं अपने आप को बदलूं। ये चीजें कितनी खुशनुमा है। परमेश्वर मुझे उत्तर देता है यदि मैं विश्वास से मांगूं। हालांकि मुश्किलें हैं इस वक्त, लेकिन मैं उत्तर प्राप्त करूंगा और परमेश्वर को महिमा दूंगा, इसलिए ये कितना आनंदित है। इसी प्रकार से आप उन चीजों को एहसास कर सकते हैं जिनके लिए आप धन्यवादी हो सकते हैं। हालेलुया, सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक को दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सिर से लेकर पैर तक उनके तमाम बीमार और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, चतुर्दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। जो भी उन पर चमके उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग और आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां मलेरिया सहित जला दीजिए। तमाम संक्रामक रोग जुकाम बुखार उनसे दूर हो। पिता उन्हें तमाम प्रकार के रोगाणुओं और विषाणु से सुरक्षा दीजिए। उन्हें तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, दर के कैंसर और आंतों के कैंसर से चंगा कीजिए। तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, बीमार रक्तचाप, हृदय के रोग, फेफड़े के रोग, स्त्री रोग, थायराइड के रोग और तमाम सूजन और जलन, वॉल्यूम, लकवा, गठिया और आंत के रोगों से वे चिंतित हो जाएं। तमाम प्रकार के दर्द उनसे दूर हो। पेट दर्द, सिरदर्द, मानसिक दर्द से मिर्गी, स्वलिंगता, दासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से भी आजाद हो जाए। तमाम प्रकार के लकवे से वे खुल जाए। उठे, चले और सूदे वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करे और अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करे। देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभाव को ठीक कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और बहन संवेदनाओं से दूर हो। तमाम प्रकार की नशे की लत से और इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता मृतक कोशिकाओं, उत्तकों और तंत्रिकाओं को फिर से ठीक कीजिए और मृतकों को जिला दीजिए। उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ। और शैतान, हवाओं के शासक, पुलिस सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, झूठी आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, उनसे दूर हो। ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारे, पापों को दूर करने के लिए सामर्थ्य दीजिए और वे पवित्र हो जाएं। वे भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटनाओं और विपत्तियों से। अपने बच्चों को, उनके घर, कार्यशाला और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से सेना और अपनी आंखों के द्वारा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से
प्रार्थना करता हूँ। आमीन।
हालांकि आप वचन के अनुसार बाहरी तौर पर कार्य कर सके, लेकिन आवश्यक तौर पर इसका अर्थ यह नहीं कि आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हो। उदाहरण के लिए, यदि भी आप किसी रविवार की सभा को ना भी छोड़े, लेकिन आपका विश्वास उसके अनुसार अलग होगा कि आप परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं, और साथ ही विश्वास कर्म के साथ होना चाहिए, और ये अवश्य ही नहीं बदलना चाहिए। जब आप तीसरे विश्वास के स्तर में आते हैं और वचन का अभ्यास करते हैं, तो सबसे पहले आपके हृदय में कुछ क्लेश होता है। आप परमेश्वर की इच्छा को समझते हैं और पालन करते हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी पापमय स्वभाव आपके अंदर होते हैं, इसलिए आपके हृदय में क्लेश होते हैं। आप सत्य में कार्य तो करते हैं, लेकिन तो भी आत्मिक विचार जो भले हृदय का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं और शारीरिक विचार जो बुरी इच्छाओं का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक दूसरे के विरोध में संघर्ष करते हैं।